ओम शांति। एक अत्यंत उलझी हुई या को बेबूझ कहानी से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। चीन में हजारों वर्ष से इस पर विचार किया जा रहा है पर उत्तर अभी तक नहीं मिला है। एक लकड़हारा एक दिन लकड़ी काटते काटते थक जाता है। बेचारा बीमार, बेचारा गरीब होता है और थोड़ा बीमार भी। इसके लिए थकान की वजह से उसे नींद लग जाती है और वहीं सो जाता है। स्वप्न में वो देखता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक खजाना गड़ा हुआ है, तो वो वहां जाता है और देखता है कि थोड़ी सी धूल है और वास्तव में खजाना वहां पर गड़ा हुआ है। बहुत बड़े बड़े हंडे हैं जिसमें कि हीरे जवाहरात सब है, पर वो सोचता है कि इस समय इसको नहीं लेके जाना चाहिए, रात में आऊंगा और फिर लेके जाऊंगा। और वहां पर वो एक लकड़ी गाड़ देता है और चला जाता है। रात में वो वहां जाता है तो देखता है लकड़ी तो गड़ी हुई है पर खजाने नहीं है। और वो ये भी देखता है कि गड्ढा खोदा हुआ है, अर्थात किसी ने खजाने ले गए, ले गया। तो वो वापस घर आता है, अपनी पत्नी को सुनाता है कि वो क्या था, यदि मैंने स्वप्न देखा, माना वो स्वप्न था और स्वप्न में मैंने देखा कि खजाना है और एक लकड़ी गाड़ दी, पर जब मैं रात में उठ के गया तो खजाना नहीं था परंतु लकड़ी तो थी। पत्नी कहती है तुमने स्वप्न ही देखा होगा और यह भी स्वप्न देखा होगा कि रात में तुम उठकर गए। उसी रात एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो भी स्वप्न में इस लकड़हारे को खजाना के पास लकड़ी गाड़ते हुए देखता है और वो दूसरा व्यक्ति उसी समय वहां पहुंच जाता है और देखता है कि लकड़ी गड़ी हुई है और खजाना भी है। तो वो खजाना निकालता है वो सारे हंडे और घर लेके आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने एक खजाना देखा, ऐसा ऐसा एक लकड़हारा देखा जिसने एक जो खजाना देख रहा है और उसने वहां पर एक लकड़ी गाड़ी और चला गया। मैं वहीं गया और लकड़ी गड़ी हुई थी और मैंने वो खजाना लिया और आ गया। पत्नी कहती है तुमने भी स्वप्न देखा होगा। वो कहते हैं अगर मैंने स्वप्न देखा पर खजाना तो सामने है, हंडे तो सामने है। पर पत्नी कहती है नहीं, ये हमारा नहीं है, तुमने स्वप्न में देखा था कि ये तुमको क्या हुआ, स्वप्न या अंतर्दर्शन पता नहीं, परंतु ये खजाना उसी का है तो क्यों ना हम इस खजाने को सम्राट के पास ले जाए। तो खजाने को सम्राट के पास लेके जाया जाता है। उस समय वहां पर वो लकड़हारा भी आ जाता है कि मेरे खजाने का क्या हुआ। तो सम्राट दोनों की बातें सुनता है और कहता है कि तुम दोनों ने ही स्वप्न देखा होगा परंतु खजाना तो है सामने, अब क्या किया जाए। तो सम्राट उस खजाने को आधे आधे हिस्सों में बांट देता है और दोनों लकड़हारों को दे देता है। रात में जब सम्राट सोने जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज एक अद्भुत सी घटना हुई और ये हुआ, तो पत्नी कहती है तुमने स्वप्न देखा होगा, शांति से सो जाओ। कहानी यहीं पूरी होती है। कल की मुरली की एक पॉइंट और आज की मुरली की एक पॉइंट। कल मुरली में बच्चे बाप से कहते हैं, बाप ने वरदान तो दिया और हमने वरदान लिया भी, पर जब उधर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वरदान है ही नहीं। जो लिया था वो सही में लिया था या स्वप्न था? क्योंकि लिया बाप तो दाता है, वो देने वाला है, वो लेता नहीं है, और उसने दिया और वो कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, और हम भी वहां है और हमने भी लिया, पर हम जब अपने घर पहुंचते हैं मधुबन से तब तो वो है ही नहीं। फिर वो क्या था? स्वप्न था। अगर वो स्वप्न था तो फिर क्यों अचानक कुछ कुछ पलों में या कुछ कुछ परिस्थिति में वो वरदान अपने आप याद आता है और काम करता है? इसका अर्थ वरदान लिया था। इस पर हम आगे भी और चर्चा करेंगे। क्या है, स्वप्न है या वास्तविकता है? भगवान आ रहे हैं, सारे खजाने दे रहे हैं, हम ले भी रहे हैं, परंतु फिर भी नहीं है, तो कारण क्या है? एक तो ये, दूसरा सदियों से मनुष्य इस संसार को समझने का प्रयत्न कर रहा है। ये संसार है क्या? कई सारे सिद्धांत, फिलोसॉफीज, दृष्टिकोण, शास्त्र है, जीव जगत ईश्वर क्या है ये जानने के लिए, और कईयों ने ये कहा है ये सारा संसार जो दिख रहा है ये स्वप्न है। किसी ने ये भी कहा है कहीं कोई भगवान है सोया हुआ, ये उसका स्वप्न है। सन्यासियों ने ये कहा है यहां कुछ भी सत्य नहीं है, जो कुछ दिखाई दे रहा है स्वप्नव्रत है। संसार को जानने की कोशिश हरेक ने की है और कहीं ना कहीं कहा है कि जो भी यहां हो रहा है कुछ भी सत्य नहीं लगता है, सब मिथ्या है, भ्रम मात्र है, जिसको उन्होंने माया कहा, भ्रम को माया कहा है संन्यास में। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा मेरे बुद्धि में जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें दे देता हूं, अब तुम्हारी बुद्धि में डिटेल, सारी डिटेल है, मैं तुमको समझाता हूं यह संसार क्या है, अब मैं तुमको बताता हूं कि यह संसार कैसे फिरता है, पार्ट यहां कैसे प्ले होता है, कैसे सतयुग से कलयुग आता है, क्या क्या यहां होता है, इस संसार का जो विवरण बाबा ने दिया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिया है। जैसे वो कहानी बेबूज है, अनसुलझी है, उसी तरह ये संसार भी बेबूज पहली की तरह है। समझने की कोशिश कर रहे अब भी लोग, सोच ही रहे पहला लकड़हारा जो कह रहा था वो स्वप्न है उसने जो देखा, या दूसरे का स्वप्न था, या ये जो राजा है वही सारा स्वप्न देख रहा है, ये रात में उसी का स्वप्न था कि उसके राज्य में ऐसे दो लकड़हारे हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान अज्ञान, नित्य अनित्य क्या है, सोच ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, पता किसी को नहीं। आज सु सुबह बाबा ने कहा, मैं तुमको समझाता हूं, तुम औरों को समझाओ। ये ड्रामा कैसे रिपीट होता है, घूमता है, फिरता है, इस कहानी पर फिर से आएंगे वापस। तो कल सुबह की अव्यक्त मुरली, इस मुरली को हम इस ढंग से रिवाइज कराएंगे या करेंगे कि अगले एक घंटे में यहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको मुरली की एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वाक्य याद हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? इसमें कुछ करना पड़ेगा आपको भी। जो सामने आके बैठ सकते हैं नीचे वो आ जाए, माता है, जो एकदम पीछे है वो सामने आ जाए, क्योंकि यहां आपको भी कुछ कुछ करना है। बोलना नहीं है पर कुछ करना होगा, खाली सुनना ही है, परंतु मुरली को हम एक अलग ढंग से आज उसका चिंतन, उसका मनन, उसका रिवीजन कहो वो करेंगे। तो मुरली का हेडिंग क्या है? सहज पुरुषार्थी आत्माओं के लक्षण। बाबा ने हमको कहा है तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है, तो हम इस मुरली से सहज पुरुषार्थी आत्माओं के 16 लक्षण निकालेंगे। परंतु इसमें आप लोगों को भी कुछ करना है। हम एक किसी को यहां बुलाएंगे, आपको यहां खड़े रहना है और जो सामान दिया जाएगा उसमें स्थित होना है। तो सबसे पहले लक्षण के लिए कोई एक माता यहां पर आ जाएंगे। जल्दी करना कुछ नहीं है, आपको खाली खड़े रहना है, कोई भी एक माता। तो सहज पुरुषार्थी आत्माओं के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है यशोदा मैया। पहला लक्षण कौन सा है? मां यशोदा। माता जी जो यहां खड़े हैं, अब उनके साथ इस सम्मान को जोड़ दो। कौन खड़ी है यहां पर? मां यशोदा मैया। उसके हाथ में दो रस्सियां है, दिख रही है सबको? कौन कौन सी दो रस्सियां है? स्नेह की रस्सियां है और मिलन के भावना की रस्सी है। इस रस्सी से क्या कर दिया? वो जो निराकार है, वो जो आकारी है, उस निराकार को, उस आकार को भी साकार सृष्टि में, साकार रूप में आने के लिए बाध्य कर दिया, भगवान को भी बांध दिया। तो सहज पुरुषार्थी आत्माओं की पहली निशानी क्या है? दो शक्तियां, दो रस्सियों से भगवान को बांध दिया। माता जी का चेहरा याद रखो, क्योंकि बाद में हम रिवीजन कराएंगे तब पूछेंगे ये कौन है। तो पहला सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात कौन? यशोदा मैया। नारद यशोदा से पूछता है, जब ऊपर से देखता है कि कैसे यशोदा कृष्ण को बांध रही है, उसको बांध रही है जो त्रिभुवन का स्वामी है, उसको बांध रही है जिसको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, उसको बांध रही है जिस जो अगम अगोचर है, त्रिलोकी नाथ है, अनंत है, विराट है, जिसे कोई पकड़ नहीं सका, जान नहीं सका, समझ नहीं सका, ऐसे को वो बांधते हुए जब नारद ऊपर से देखता है तो कहता है कि हे यशोदा, तुमने ऐसी क्या तपस्या की जो भगवान को बांध रहे हो, जो किसी के भी पकड़ में नहीं है और वो यहां कितनी आसानी से बंध रहा है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुमने अपने स्नेह की डोरी से बाप को बांधा है, तो बताओ बांधने वाला बड़ा है या जो बंध गया वो बड़ा है? मतलब हम बड़े हैं? मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम उससे बड़े हैं? तो बाबा ने ये प्रश्न पूछा है किसी मुरली में। अच्छा हमने उसे इन दो रस्सियों से बांधा तो रिटर्न में उसने क्या कर दिया? कौन बनाया, कौन बताएगा? इन्हीं दो रस्सियों को उसने लिया और दिल तख्त का आसन उसमें रख दिया और उसका झूला बनाया और वो हमको झूला रहा है। कहां झूला रहा है? अपने दिल तख्त के आसन में। तो सीट पर सेट हो, ये रस्सी मजबूत है, हिलती तो नहीं है। प्रश्न पूछा है बाबा ने, रस्सी मजबूत होनी चाहिए, कौन सी रस्सियां? स्नेह की रस्सी और मिलन के भावना की रस्सी। बैठ जाइए माता जी। तो पहली निशानी क्या हुई? सभी यशोदा मैया बन गई। लिखना कुछ नहीं है, खाली देखना है और समा लेना है, और जो यहां खड़े रहेंगे उसको इसी स्वरूप में स्थित हो जाना है कि मैं वो हूं जिसने भगवान को बांध दिया है। अब दूसरी निशानी, राजू भाई आ जाओ। दूसरी निशानी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम काज करीबे को आतुर, निरंतर राम के काज करीबे को आतुर है, ऐसा राम रसायन तुम्हारे पासा। तो दूसरी निशानी कौन सी है सहज पुरुषार्थी आत्माओं की? हनुमान अर्थात पार करने वाला, अर्थात समस्या कितनी भी बड़ी हो, अर्थात पहाड़ जैसी समस्या हो उसको भी सेकंड में पार करने वाला कौन? हनुमान अतुलित बलधामा। दिख रहा है ना कितने शक्तिशाली है राजू भाई? तो अतुलित बलधामा, कहीं रुकने वाला नहीं है, कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, ना जंगल में रुकने वाला, ना नदी में रुकने वाला, ना पहाड़ में रुकने वाला, क्योंकि पहुंचना है उत्तिष्ठ प्राप्त, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण्य बोधतः। चेतना जाग चुकी है अंदर की, जब तक गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते आत्मा नहीं रुकेगी। तो दूसरी निशानी क्या हुई? सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात सेकंड में पार करने वाले, कहीं पर भी रुकने वाले नहीं, समस्या कितनी ही विकराल हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, रुकेंगे नहीं, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो दूसरी निशानी याद है ना, जब भी इनको देखो तो क्या याद करोगे? हनुमान को। बैठ जाओ। सहज पुरुषार्थी आत्माओं की तीसरी निशानी, इतिहास का पात्र है, उसके जैसा नहीं बनना है, द्रौपदी। पुकारने वाली नहीं, ये प्राप्तियों का समय है, इसके लिए द्रौपदी नहीं बनना है। सहज पुरुषार्थी आत्माओं की क्या निशानी है? पुकार खत्म, बचाओ निकालो। ठीक है कमलेश भाई, पुकारना बंद, नो कंप्लेंट। बाबा की अव्यक्त महावाक्य है, जब बच्चे निरंतर कंप्लेंट करते रहते, निरंतर पुकारते रहते हैं तो बाबा क्या कर देता है? परम धाम का अपना रेडियो स्विच ऑफ कर देता है। जब देखो तब कंप्लेंट ही कंप्लेंट, जब देखो ये ठीक नहीं है, स्थान ठीक नहीं है, सेंटर ठीक नहीं है, साथी ठीक नहीं है, सेवा ठीक नहीं है, बहन जी ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, घर ठीक नहीं, टेढ़ा मेढ़ा है। और जब कोई बच्चा बाबा की महिमा करता है, गुणगान करता है, प्राप्तियों का गुणगान करता है, तो बाबा फुल वॉल्यूम कर देते हैं, निर्वाण धाम में उसकी ही आवाज गूंजती रहती है। तो तीसरी निशानी सहज पुरुषार्थी आत्माओं की, द्रौपदी नहीं, पुकारना खत्म। दो दिन पहले फ्राइडे साकार मुरली थी बाप की, बच्ची अब पुकारती है बाबा को, बाबा बचाओ, शरण दो, मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी, ऐसे ही शरण नहीं दूंगा, मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेगी। बैठ जाओ। चौथी निशानी, कोई भी बहन जल्दी 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 आ जाइए आप ही। चौथी निशानी सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात शंकर, जिसका तीसरा दिव्य नेत्र खुला है, तीसरे दिव्य नेत्र से प्राप्तियों को देखने वाला, तीसरा दिव्य नेत्र अनुभव का नेत्र इसको कहा है बाबा ने। चौथी निशानी क्या है? निरंतर तीसरा दिव्य अनुभव का नेत्र खुला हुआ हो, चीजों को स्थूल आंखों से नहीं देखो, उस नेत्र से देखो। स्थूल आंखों से देखोगे तो स्थूल दिखेगी, जैसे उदाहरण भी दिया बाबा ने, उस स्थूल आंखों से चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे इस तीसरे नेत्र से प्रारब्ध क्या है, प्राप्तियां क्या है, हमें क्या क्या मिला है, वो निरंतर देखना, अर्थात तीसरा नेत्र खुला रहे। बैठ जाइए। तो चौथी निशानी याद हो गई सबको, कौन सी? शंकर। पांचवी निशानी, फिर से कोई एक बहन, सहज पुरुषार्थी आत्माओं की पांचवी निशानी है शक्ति अवतार। शक्ति अवतार अर्थात चाहे जमीन कितनी भी टेढ़ी हो, संकल्पों की बुद्धि को मोच ना लगे और संकल्प टेढ़े ना हो, यह है शक्ति अवतार। ये नहीं कह सकते तुम यह आंगन ठीक नहीं है, संकल्पों की मोच या संकल्पों का टेढ़ा होना बुद्धि को मोच लगती है बाबा ने कहा। यह बुद्धि की मोच क्या है? स्प्रेन ऑफ द इंटेलेक्ट, चिंतन का विषय है, इमोशनल फ्रैक्चर्स। कब यह स्प्रेन हो जाता है, कब यह मोच आ जाती है चलते चलते? क्या हम भी कभी उदास, कभी निराश, कभी दुखी, ये सब हो जाना, खिन्न हो जाना, निरस हो जाना, विरस हो जाना, जीवन में इंटरेस्ट ही नहीं कोई पुरुषार्थ करने में, ऐसी अवस्था आ जाए तो समझ लेना क्या हो रहा है, मोच आ गई है। तो शक्ति अवतार अर्थात मोच न खाने वाली, अटेंशन की कमी है अर्थात अचानक गिरना अर्थात अटेंशन की कमी। बाबा ने उदाहरण दिया है, घुमाने लेके जाते थे बाबा और कोई गिरता था तो क्या करते थे, क्या कहते थे? ये अटेंशन की कमी है, टोली बंद। देना भी प्यार है तो बंद करना भी प्यार, इसके लिए अचानक गिर जाना ये क्या है? अटेंशन की कमी। बैठ जाइए। तो याद हो गया, शिव शक्ति अवतार पांचवी निशानी। छठवी निशानी, अच्छा चलो उनको आने दो, आ जाइए आप, कोई भी आ जाइए विठल भाई। छठवीं निशानी है हेवन कॉन्ट्रैक्टर। छठवीं निशानी सहज पुरुषार्थी आत्माओं की हेवन कॉन्ट्रैक्टर। बाबा ने उदाहरण दिया है ओम शांति भवन का। उस कॉन्ट्रैक्टर ने ये नहीं सोचा ये जो जमीन है टेढ़ी मेढ़ी है, मेहनत की, यहां से पत्थर उठाया उधर डाला, वहां से पत्थर उठाया इधर डाला, मेहनत की। हेवन का तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हेवन स्टैब्लिशमेंट का, हेवन को स्थापन करने का तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो तुम जमीन कैसी भी हो उसके लिए तुम्हें भरना होगा ज्ञान से, गुण से, शक्ति से, खुशी से, नशे से। अगर कुछ भी खाली होगा तो गड्ढा होगा और उसमें गिरोगे और फिर मोच लगेगी। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर बन जाना है। कॉन्ट्रैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कौन सा? सहज हेवन की एस्टैब्लिशमेंट का। बैठ जाइए। तो छठवा क्या हुआ? हेवन कॉन्ट्रैक्टर। सातवा, कोई भी बहन आप आ जाइए। सातवा है सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात गाइड। सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात गाइड, इनको अच्छे से देख लो, हम बाद में पूछने वाले हैं सारा कौन कौन क्या है। सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात गाइड जो दूसरों को मार्ग दिखाए, क्योंकि ये बेहद का मार्ग है, राम इंटरनेशनल हाईवे है, भीड़ बहुत ही कम है इसमें। पुरुषार्थ के मार्ग में भीड़ बहुत कम है, आलस और अलबेलेपन के मार्ग में भीड़ बहुत ज्यादा है। ये जो पुरुषार्थ का मार्ग है इसमें भीड़ बहुत कम है। तो खुद भी मोच न खाने वाले और दूसरों को भी बचाने वाले अर्थात गाइड। तो सहज पुरुषार्थी आत्माओं की सातवीं निशानी है गाइड। आठवीं निशानी, बैठ जाइए कोई भी भाई आप। आठवीं निशानी सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात लवलीन आत्मा, बाप के प्यार में खोई हुई आत्मा। जब तुम बाप के प्यार में खो जाते हो, लास्ट संडे की मुरली सुदबुद्ध खो जाती है, जैसे भक्त सुदबुद्ध खो देते हैं, डूब जाते हैं, खो जाते हैं, समा जाते हैं, वैसे तुम भी सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात लव लीन आत्मा अर्थात खोई हुई आत्मा। और जब तुम इस तरह भगवान के प्यार में खोए हुए होते हो तो क्या होता है, बाहर के वातावरण से क्या रहते हो, सेफ। ये समानता ही सेफ है, क्योंकि जब तुम बाबा की याद में खो जाते हो तो उसकी जो शक्तियां है वो तुम्हारी शक्तियां बन जाती है, तुम शक्तिशाली हो जाते हो, तुम माला माल हो जाते हो, तुम बाप समान हो जाते हो। तो आठवीं निशानी कौन सी हुई, लव लीन। बैठ जाइए। नौवीं निशानी, इधर से कोई भी आ जाइए, कोई भी बहन आप ही, अच्छा चलो वो आ रहे। नौवीं निशानी है अलबेले नहीं, सहज योगी जीवन वाले। अलबेले नहीं, बाबा ने अलबेले पुरुषार्थ की, पुरुषार्थी की विशेषता सुनाई है। क्या करता है वो, अंदर से खाता है दिल और बाहर से गुण गाता है, किसके, खुद के। ये अलबेले पुरुषार्थी की निशानी है। अंदर से तो दिल खाता है क्योंकि अमृत वेला इतना शक्तिशाली नहीं हो रहा है, और बाहर से बता रहे हम बहुत पावरफुल अमृत वेला करते हैं, हम रेगुलर करते हैं। अंदर से दिल खा रही है, अंदर से पवित्रता का सूक्ष्म में खंडन हो रहा है, और बाहर से हम ब्राह्मण हैं, हम पवित्र हैं, दुनिया को पवित्र बनाने वाले हैं। अंदर से धारणाएं टूट रही है, अंदर से व्यक्तियों में लगाव है, अंदर से कहीं ना कहीं श्रीमत का बार बार उल्लंघन, परंतु बाहर से अपने ही गीत गाता है। तो ये किसकी निशानी हुई, अलबेले पुरुषार्थी की। तो नौवी निशानी है अलबेला नहीं, सहज पुरुषार्थी। बैठ जाइए। दसवा, कोई भी इधर से। दसवा अलबेले पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थी आत्माओं की निशानी है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, या फिर मैं शिव शक्ति हूं, या फिर मैं मुश्किल को सहज बनाने वाली आत्मा हूं। बाबा ने कहा तुम ये नहीं कह सकते, ये तुम्हारी भाषा ही नहीं है कि चाहते हैं पर हो नहीं रहा है। ये भाषा दुर्योधन की है महाभारत में। वो कहता है मैं क्या करूं पितामह, मैं जानता हूं मैं अधर्म के पक्ष में हूं, मैं ये भी जानता हूं मैं जो कुछ कर रहा हूं अनीति है, परंतु मुझ में इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं अपने आप को रोकूं। बाबा ने कहा चाहते नहीं है फिर भी हो रहा है, ये क्या है, ये मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, ये ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं है, इस भाषा को समाप्त कर दो। मुश्किल तुम नहीं कह सकते, मुश्किल को क्या कर दो, वो तो आगे कहा है, मुश्किल नहीं ये तुम, ये तुम्हारे लिए सहज है, मुश्किल को भस्म कर दो तपोभूमि में। मुश्किल को सहज करने वाले या फिर मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या शिव शक्ति हूं, तीन शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने। बैठ जाइए। तो दसवीं निशानी है मास्टर सर्वशक्तिवान। ग्यारहवीं निशानी, कोई भी इधर से, संदीप ग्यारहवीं निशानी है परिवर्तन के पात्र या फिर दृढ़ संकल्प के पात्र। वरदान तो तुमको मिला है परंतु वहां जाके वरदान है ही नहीं, फिर क्या करते हो? बाप पर कसूर लगाते हो, होशियारी करते हो कि बाबा ने दिया ही नहीं, या फिर ले लिया और बाबा तो जानता है, बाबा दाता है या लेता है। एक पात्र, बारिश हो रही है ठीक है, और हमने एक पात्र रख दिया, ऐसी पांच अवस्था है जिस अवस्थाओं में वो पानी उसमें नहीं जाएगा। कौन कौन सी? सबसे पहले उसमें छेद है तो बह जाएगा। ज्ञान तो भर रहे पर सारे दिन भर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, पता नहीं कहां कहां ज्ञान, सारे लीकेजेस चला जा रहा है। एक तो छेद, दूसरा उल्टा रखा हुआ है, कैसे भरेगा उसमें। तीसरा घर के अंदर है, कैसे भरेगा। बारिश बाहर आ रही है, परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है और हम घर में दुबक कर बैठे हुए हैं और फिर चिल्लाते हैं कि भगवान मदद नहीं करता। अरे परमात्मा स्नेह बरस रहा है। सैटरडे का वरदान, बाबा के क्रांतिकारी महावाक्य थे वरदान में, परमात्मा स्नेह ही संपूर्ण योग है। इस परमात्मा स्नेह में समा जाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान की ऐसी परिभाषा, योग की ऐसी परिभाषा, तुम संपूर्ण योगी और संपूर्ण ज्ञानी आत्मा हो। संपूर्ण ज्ञान अर्थात परमात्मा स्नेह में समा जाना, और संपूर्ण योगी अर्थात परमात्मा स्नेह। कितनी सुंदर परिभाषा दी है सैटरडे का वरदान सुबह का। तो तीसरी अवस्था, बर्तन घर में रखा हुआ है। चौथी, ढका हुआ है तो कैसे भरेगा। और पांचवी, उसमें पहले से ही कीचड़ा है, पहले से ही उसमें कीचड़ा है, तो वो पानी उसमें कैसे आएगा। बाबा ने कहा वरदान तो तुम ले लेते हो परंतु पात्र भी तो देखो। दृढ़ संकल्प का पात्र धारण करने वाले, परिवर्तन का पात्र धारण करने वाले, तो सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात दृढ़ संकल्प का पात्र धारण करने वाले। ग्यारहवीं पॉइंट। नेक्स्ट बारहवीं पॉइंट, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात प्रभाकर भाई, सदा चीयरफुल चेहरा, सुख के झूले में झूलने वाले, तुम सुखदाता की संतान हो। आज सुबह का वरदान, दुख में आ ही नहीं सकते, सदा सुख स्वरूप हो। तो निशानी क्या है सहज पुरुषार्थी की? चीयरफुल चेहरा, दुखी नहीं, उदास नहीं, गमगीन नहीं, खिन्न नहीं, हतोत्साहित नहीं, डिसहार्टेंड नहीं किसी भी बात से, सदा खुशी में नाचने वाले। साकार में बाबा ने कहा है अरे तुम्हें भगवान मिला है, तुम्हें तो इतनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए राजीव भाई, कितनी, तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए, तुम्हें मिला कौन है। तो बारहवीं निशानी कौन सी हुई? चीयरफुल। तेरहवीं निशानी, बैठ जाइए, इधर से कोई आ जाए। गिरिधर गोपाल की गोप और गोपिया, क्या कर दिया था गिरिधर ने? गोवर्धन को उठा दिया था। तो सहयोग की उंगली देने वाली आत्मा, हर कार्य में सहयोग दो, और सबसे बड़ा सहयोग है वातावरण, वायुमंडल, वाइब्रेशंस को शक्तिशाली बना दो। भक्ति में तो तुमने वैसे भी 99% गवा दिया, बहुत जबरदस्त आंकड़ा दिया है बाबा ने, एक ही % सफल किया है बस। तन मन धन, तन भी क्या हो गया तुम्हारा, नाम की जवानी है बस, बूढ़े शक्तिशाली है जवानों से। धन पहले देवता थे, बाद में बिजनेसमैन बन गए। कहां देवता और कहां वैश्य, कहां राजा भोज और कहां मन अशांत भटक रहा है, ये तुमने पाया है, ये है तुम्हारी प्रगति। क्या थे तुम और क्या बन गए? और हम सोच रहे, पता नहीं संसार के लोग सोचते, हम स्वर्ग में हैं, कितनी उन्नति हो रही है। बाबा कहते 99% तुमने गवा दिया है, अब जो 1% है बस उसको तो लगाओ इधर, तो तुम 21 जन्म सफल हो जाएंगे। तो सहयोग की उंगली देने वाली, तेरा भी पॉइंट सहज पुरुषार्थी अर्थात हर कार्य में सहयोग देना, बैठ जाइए। 14वीं पॉइंट, इधर से कोई आ जाएगा। हाँ रमेश भाई, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था। आज सुबह की साकार मुरली, सभी कब्र दाखिल है, सब मरे पड़े हैं। 2 दिन पहले साकार मुरली थी, सारी दुनिया ही वनवाह में, इसमें रखा ही क्या है। एक बाप को याद करो बस, आज सुबह की मुरली। तो सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात केवल और केवल एक को बिठाया है, मन मंदिर में, दिलो दिमाग में, चित्त में, चेतना में, भाव में, स्मृति में, भावनाओं में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, कर्म में, स्मृति में, कल्पनाओं में, दृष्टि में, दृष्टिकोण में, एक ही बाप और कोई नहीं। अगर तीसरा कोई आ गया तो तीसरी आंख बंद, तीसरी आंख वाला कौन है? उधर है, तीसरी आंख बंद हो जाएगी अगर तीसरा कोई आ गया तो, बैठ जाइए। 15वीं पॉइंट, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात, कौन आएगा? कोई भी आ जाओ। सदा संतुष्ट, सदा संतुष्ट, कुछ भी हो जाए दुखी नहीं, उदास नहीं, जो मिला है बहुत है। वो दिखाया है, दो सन्यासी, दो फकीर एक साथ रहते हैं। वैसे तो सन्यासी 3 दिन से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं रुकते, परंतु हाँ वर्षा ऋतु में रुक जाते हैं 3 मास या 4 मास। ऐसे ही 2 सन्यासी थे, वर्षा ऋतु था तो उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, दिन भर निकल गए घूमने, भिक्षा मांगने, प्रवचन देने या जन कल्याण करने। जब रात को लौटे तो देखा इतनी जबरदस्त आंधी और तूफान आया है कि आधी झोपड़ी उड़ गई है, आधा उसका छत। तो पहला जो छोटा सन्यासी था कहने लगा, हे भगवान, क्या यही तुमने हमको दिया? दिन रात तेरे गुणगान गाते हैं और तू देता ये है? संसार में इतने दुष्ट और पापी आत्माएं, सबके घर ठीक है, हमारा ये झोपड़ी मिली थी, पूरी तहस नहस कर दी, कोई दूसरा कोई मिला नहीं। तब तक वो छोटा सन्यासी देखता है, बड़ा जो सन्यासी होता है वृद्ध, घुटनों के बल टेक के भगवान से प्रार्थना या कहते हैं, हे प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने इतना तो बचाया कि हम इसमें सो सके, तेरी कृपा तेरी अनुकंपा अपरंपार है। वो दोनों वहां सो जाते हैं और आधी रात में या सुबह सुबह भोर होती है तो जो बूढ़ा सन्यासी होता है उसकी आंखें खुलती है तो देखता है ऊपर आकाश ही आकाश। वो कहता है, हे प्रभु ये तूने पहले क्यों नहीं किया, क्यों आंधी को आना पड़ा, पहले ही कर दिया होता तो कितना मैं तेरा ये सुंदर रूप देखता, कितना निरभ्र आकाश, उसमें ये तारे, ये जब तक छत थी तब तक तो मैं ये सौंदर्य देख ही नहीं पाया था। अच्छा ही किया तूने जो छत को उड़ा दिया। ऐसा संतुष्टता का भाव। तो सहज योगी आत्मा, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात सदा संतुष्ट, बैठ जाइए। लास्ट पॉइंट, इधर से कोई भी आ जाए। सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात एक रस स्थिति, जो भी संकल्प आया वो संकल्प क्या कर दो, बाप को दे दो और खुद निरसंकल्प बन जाओ। ऐसा जो भी शुभ संकल्प होगा वो पूर्ण होगा, उसमें सफलता होगी। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। तो सहज पुरुषार्थी आत्मा की निशानी क्या हुई? एक रस स्थिति। आज सुबह की मुरली में एक रस स्थिति किसको कहा बाबा ने? कौन बताएगा उसको इनाम? कौन बताएगा? हाँ, हर्षित और गंभीरता का बैलेंस रखने वाले एक रस स्थिति है। बैठ जाइए। तो अभी हम मुरली को थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर थोड़ी और चर्चा करेंगे। हाँ जी, राजीव भाई आ जाओ। अब बताओ ये कौन है? जल्दी जल्दी। अच्छा, उठने की जरूरत नहीं, बोल दिया सबने। तो सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात हनुमान, अर्थात किसी भी परिस्थिति में रुकने वाले नहीं, समस्याओं को सेकंड में पार करने वाले, पहाड़ नदी और जंगल कहीं पर भी भटकने वाले नहीं। जल्दी जल्दी आते जाओ। ये कौन है? ये है द्रौपदी नहीं। कमलेश भाई, द्रौपदी नहीं अर्थात पुकार नहीं, अर्थात रोना नहीं, अर्थात कंप्लेन नहीं, चिल्लाना नहीं। बाबा तूने जो दिया है बहुत दिया, इतना दिया, इतना दिया, बस स्टॉप। बाबा को कह रहे बहुत, अभी नहीं चाहिए, बहुत, रुको अभी। सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात महेंद्र भाई, क्या है ये? मास्टर सर्वशक्तिवान। ये कहने वाले नहीं क्या करे, चाहते तो है पर होता नहीं। ये कहने वाले नहीं कि जानते तो है परंतु कर नहीं पाते। शिव शक्ति। मुश्किल शब्द समाप्त। बाबा ने कहा तपो भूमि में आए हो तो मुश्किल शब्द को भस्म करके जाना। अब आप सबसे एक प्रश्न है, ऐसे 10 शब्द बताओ जो इस भूमि में भस्म करके जाना है। एक तो बाबा ने बता दिया मुश्किल, 10 शब्द बताओ जो इस तपोभूमि में आके भस्म करके जाना है, जो मुरलियों में आते रहते हैं। पहला है मुश्किल, दूसरा है लेकिन, तीसरा है कर लेंगे गे, चौथा है शब्द क्यों, क्या क्यों, क्या, ये शब्द यहां से भस्म करके जाना। पांचवा मेहनत, छठवा कारण, आठवा जल्दी बताओ कभी कभी, कभी कभी, नौवा पता नहीं होगा, नहीं होगा, आठवा नहीं नहीं, आठवा, आठवा कौन सा शब्द भस्म करना है जो हमारी डिक्शनरी में, सिंगल शब्दों को खत्म करो, बाबा को डबल शब्द बहुत पसंद है, सिंगल सिंगल शब्द, असंभव, असंभव शब्द को भस्म करके जाओ, मेहनत शब्द को भस्म करके जाओ, मुश्किल डिफिकल्ट शब्द को भस्म करके जाओ, क्या करे कैसे करे पता नहीं होगा, गे गे की भाषा, ये सब भस्म करके जाओ। अपनी एक लिस्ट निकालनी है, जब मैं मधुबन में आया हूं तो मुझे कौन कौन से शब्द यहां पर भस्म करने हैं। आदत ही पड़ गई है क्या? कमजोर हूं, होता नहीं, ये सारे शब्दों को भस्म कर दो। ये तपोभूमि है, अग्नि प्रज्वलित है, यहां पर डाल दो हो जाएगा काम। नेक्स्ट विठल भाई, कौन है ये? हेवन कॉन्ट्रैक्टर, सादे कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कोई स्वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर। बाबा ने आज कहा ये सबसे ऊंची पढ़ाई है, पाई पैसे की पढ़ाई नहीं है, वो पाई पैसे के कॉन्ट्रैक्टर नहीं, सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले और हेवन के कॉन्ट्रैक्टर है, हेवन का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जमीन अच्छी नहीं है, जमीन को दोष नहीं देना, नाचना सीखना होगा, ठीक है, ये मत कहो ये आंगन ही टेढ़ा है। नेक्स्ट इधर से, ये कौन है? संदीप भाई, कौन है? सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात परिवर्तन के पात्रधारी, अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्रधारी, अर्थात दृढ़ संकल्प का पात्र हो तब वो वरदान उसमें आएगा, नहीं तो छेद अगर है, उल्टा अगर रखा है, घर के अंदर रखा है, ढका हुआ है, पहले से ही बुद्धि में किचड़ा है, तो वो पानी वो नहीं आएगा उसमें। फिर वहां जाके कहते हैं कि बाबा ने तो दिया पर पता नहीं गया कहां, बाबा को ही दोषी ठहराते हैं। बैठ जाइए, इधर से हो गए सारे। ये कौन है? सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात लवलीन आत्मा, बाहर के वायुमंडल का कोई भी प्रभाव नहीं, समानता ही सेफ है। ठीक है, नेक्स्ट। इधर हो गए सारे। हाँ, ये तो चेहरे से ही दिख जाता है, फिर भी खड़े हो जाइए। प्रभाकर भाई, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात सदा चेयरफुल, दुख का नाम निशान नहीं, दुख के छींटे नहीं, दुख की छाया नहीं, परछाई नहीं, दुख की आंधी नहीं, तूफान नहीं, झोंके भी नहीं, कुछ नहीं, आनंदमय जीवन, भगवान मिल गया है, इसी नशे में रहने वाले, सदा चेयरफुल चेहरे वाले सहज पुरुषार्थी आत्मा। बैठ जाइए। रमेश भाई, एक ही बाप है बस, कोई देहधारी नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल एक बाप से ही सारे संबंध है, एक बाप से ही सारे रिश्ते। यह अवस्था है सहज पुरुषार्थी आत्माओं की। अभी इधर से चालू करेंगे। कौन कौन है? अच्छा, सुशील भाई सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात एक रस स्थिति, जो भी संकल्प आया बाप को दे दो, शुभ संकल्प होगा तो पूर्ण होगा जरूर। तो मैं एक रस स्थिति वाली आत्मा हूं, चाहे कितनी भी हलचल बाहर होती रहे होने दो, परंतु हम एक रस स्थिति वाली है, और स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, क्योंकि उसको सौंप दिया है, उसका काम है, वो कराएगा। ऐसा समर्पण भाव, ऐसा समग्र समर्पण भाव, इंटीग्रेटेड सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर ऑफ इंटेलेक्ट, ऑफ माइंड, ऑफ इन संस्कार, एक्शंस, वर्ड्स, सब कुछ। अभी इधर से, इधर के हो गए सब भाई। अभी बहने, जल्दी जल्दी आ जाओ। ये कौन है? ये है ये कौन है? शक्ति अवतार। मोच नहीं, संकल्प टेढ़े नहीं। इसकी हर एक लिस्ट बनाए कि संकल्पों की मोच या टेढ़ापन मुझ में कहां आता है, और बुद्धि की मोच मुझे कब लगती है। बैठ जाइए। नेक्स्ट, ये कौन है? ये है गाइड, क्योंकि ये मार्ग बेहद का है, राम इंटरनेशनल एक्सप्रेस हाईवे है, इस पर भीड़ बहुत कम है। टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अंग्रेजी कवि लिखता है, जंगल में दो मार्ग थे, एक मार्ग भीड़ वाला, दूसरा मार्ग जिसमें लेस ट्रेवल्ड, कोई नहीं जाता है, एंड आई हैव टेकन दैट पाथ, मैंने वो मार्ग लिया, और उसी के कारण यही तो अंतर है उसमें और मुझ, उनमें और मुझ में, जिस पथ पर कोई नहीं गया उस पथ पर चलने वाला हूं मैं। तो बेहद का मार्ग है, इस पर भीड़ कम है, और खुद तो जाना है पर दूसरों को भी ले जाने वाले है। इसके लिए गाइड को और एक बात याद रखनी है कि जो खुद दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला है वो कभी खुद भटक नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट। इधर, ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, ये कौन है? सदा संतुष्ट आत्मा। नेक्स्ट, यशोदा मैया। क्या करना है? स्नेह से और भावना से भगवान को भी बांध देना है। तो कितना प्यार चाहिए उसमें, कितनी तपस्या चाहिए उसमें, तभी वो बंधेगा, नहीं तो वो बंधेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा। नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, सब जगह नहीं जाता है वो, जिनका हृदय मक्खन की तरह सफेद, साफ, शुद्ध, नवनीत की तरह पावन जो है, उसी घर में माखन चुराने जाता है, सब जगह नहीं जाता है वो। जो गोपी बन चुकी है उसी के घर जाता है वो। नेक्स्ट, ये कौन है? तीसरा नेत्र खुला, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, अनुभव का नेत्र, खुला रहे और स्पष्ट देखे कि ये है प्रालब्ध, स्पष्ट देखे ये है प्राप्तिया जो बाबा से मिल रही है। नेक्स्ट, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात ये कौन है? अलबेला नहीं, ऐसा कुछ कर्म नहीं करना है जिसे दिल खाता रहे। बाबा ने कहा छिपाओ नहीं, बाप तुम्हें युक्तियां बताते फ्राइडे की मुरली, फिर भी बच्चे छुपाते, मैं निराकार पर सब जानता हूं, तुम आओ तो मेरे पास मैं बताऊंगा तुमको युक्तियां, छिपाओ मत पर, नहीं तो अंदर क्या हो जाएगा? गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव, दोषी भाव, दुनिया के सामने कुछ और अंदर ही अंदर कुछ और। ये बहुत बड़ी बाधा है पुरुषार्थ में। जो भी हुआ है, जो भी हुआ है जीवन में, जैसी भी घटनाएं, जो भी पाप, सब कुछ सुना दो। विदेश में ऑथर संत हुए थे सेंट ऑगस्टीन, पूरी किताब लिख दी है कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, सब लिखा है मैंने जवानी में क्या क्या प्रॉप पाप किए, मॉरल सिंस, मीनियल सिंस, मॉर्टल सिंस, सब लिख दिया, और भगवान को कैसे मैंने पाया उसके बाद। कन्फेशन, बोलो कि हमने हाँ ये किया है, पहले मानो तो ही तो क्षमा होगी, छिपाओगे तो क्षमा नहीं होगी और बढ़ेगा पाप। इसके लिए सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात अलबेले नहीं। नेक्स्ट, सहज पुरुषार्थी आत्मा अर्थात क्या है ये बहन जी? गिरिधर गोपाल की, गिरिराज को उठाने वाली, कलयुग रूपी पहाड़ को उठाने वाली, भगवान जो है उसकी साथी। एक और बात है यहां पर, प्रश्न पूछा जाता है गोवर्धन को किसने उठाया, सब कहते हैं कृष्ण ने, कथाकार और अर्थ लगाते हैं और किसने उठाया, सब कहते वो जो गोप गोपियां थे उन्होंने, लकड़ी लगाकर खड़े थे, परंतु उठाने वाला कोई और ही था, जो राधा को मानने वाले हैं, राधापंती, वो कहते हैं राधा अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थी, उसकी दृष्टि से उठा था वो। कृष्ण तो कुछ भी नहीं, राधा ही सर्वश्रेष्ठ है, आदिशक्ति है, कृष्ण तो उसके सामने कुछ नहीं है, उस आदिशक्ति की दृष्टि से वो उठा था। तो दृष्टि से भी इस गोवर्धन को उठा देना, दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, कर्म से, संकल्प से, सबसे। कोई और बचा है? और कौन बचा है? हो गए 16 पॉइंट्स। तो ये मुरली को जिस ढंग से हमने आज सुना, जो भी यहां आए उन्होंने उसी स्वरूप में स्थित होना है, और जो नहीं भी आए उनको मुरली को इस तरह पढ़ना है, उसका इस तरह चिंतन करना है कि वो मानस पटल पर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, अंकित हो जाए। जब ऐसी अंकित हो जाएगी, जब नस नस में समा जाएगी, तब उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम बन पाएंगे। फिर वो नहीं रहेगा, एक स्वप्न मात्र नहीं रह जाएगा, वो वरदान वास्तविक रहेगा। ठीक है, ऐसे सहज योगी आत्माओं को, ऐसे सहज पुरुषार्थी आत्माओं को, ऐसे मुश्किलातों को सहज करने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे सदा मालामाल आत्माओं को, ऐसे सदा स्वकल्याण के साथ विश्व कल्याण, खजानों को स्वकल्याण के साथ विश्व कल्याण में लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उस गीत में जितनी 16 पॉइंट सुनाई है सभी अपने मन के मन में रिवाइज करेंगे, और जिसको यहां देखा उसका चेहरे के साथ में भी जोड़ सकते हो उसको, या फिर खाली रिवाइज करो सारी की सारी 16 पॉइंट्स। ओम शांति।